الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا سيدنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وارجل فرجه
وأهل بيته الأطيبين الأنجبين الأطهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله وربانياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق: نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات بيجي محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج.
بزرگان محترم، عزیزان گرامی، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن مجید کے حوالے سے جس گفتگو کا سلسلہ آپ کے درمیان جاری ہے، اس میں آج اس موضوع پر گزشتہ سے پیوستہ گفتگو ہے کہ آئندہ جہان اور فیوچرلوجی ایک ایسا کرنٹ ٹاپک ہے، ایک ایسا مختلف موضوع ہے جس کے سلسلے میں ہر انسان جاننے کی کوشش کرتا ہے، کمزور سے کمزور انسان بھی جاننے کی کوشش کرتا ہے اور شہزور سے شہزور انسان بھی جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت ہی اہم موضوع ہے، بہت ہی کرنٹ ٹاپک ہے، ہمیں اس سلسلے میں زیادہ جاننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس سلسلے میں ہمارے ہی پاس سب کچھ ہے، سب سے زیادہ بولنے کے لیے ہمارے پاس ہے، اور وہ باتیں ہمارے پاس بتانے کے لیے ہیں کہ کسی دیگر کسی دوسرے ریلیجن میں ابھار ہوں، حتیٰ اسلام کے دیگر مکاتب فکر جو ہیں، اسکول آف تھاٹ جسے آپ کہتے ہیں، ان کے یہاں بھی اتنی باتیں نہیں ہیں جتنا مکتب اہل بیت کے یہاں اس موضوع پر بولنے کے لیے اور دبی کچلی انسانیت کو امید کی کرن دکھانے کے لیے گفتگو ہو۔ یہ بہت اہم موضوع ہے اور قرآن مجید نے اس موضوع کے اوپر اہمیت دی ہے کہ آئندہ جہان کس کا ہے، فیوچر کس کا ہے، मैंने कल आपके सामने अर्ज किया कि हुक्मरान ये चाहते हैं कि वो साबित करें कि आइंदा हमारा ही होगा, यानी जिस तरीके से वो इस्तेमार और इस्तेमार और आज कुचल रहे हैं, आइंदा भी वो कुचलते ही रहेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि तुम अपना सर हमेशा झुकाए रहो, कभी भी उम्मीद न रखो कि तुम्हें सर उठाने की नौबत आएगी। और जब इंसान की उम्मीद खत्म हो जाती है तो उसकी ताकत भी जवाब ले जाती है, और जब तक उम्मीद बाकी रहती है उस वक्त तक ताकत भी उसका साथ देती रहती है। एक अंदरूनी ताकत होती है उम्मीद, जो सब कुछ लुटने के बाद भी इंसान को कवि बनाए देती है। और आपके लिए ये बात शायद ताज्जुब का सबब न हो कि काम इसी पर हो रहा है। इस हकीकत को समझिए, अपनी फिक्रों से बाहर निकलिए, इस फिक्र को छोड़ दीजिए कि हमें दूसरों से क्या मतलब, जिसको जो करना है करने दीजिए, हम अपना कर, नहीं, अपने बारे में फिक्र करना इंसानियत नहीं है, दूसरों के बारे में सोचना इंसानियत की दलील है। दूसरों का दर्द आपको परेशान करे वो आपके लिए सबसे बड़ी चीज है। आपके पास दो अजीम दौलत है जिसको छीना जाना है, जिसको छीनने का प्लान है। जब तक आपके पास ये दो दौलत रहेगी कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए कि ये देखा जा चुका है तजुर्बे के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, कि जब भी आपका मुकाबला तलवार और असलहे से किया गया आपने मुकाबला किया। आज इस्तेमार की जो साजिश है, इस्तेमार ने प्लान बनाया है कि अगर तशय्यों को मिटाना है तो इनके दरमियान दो चीजें हैं, इन दो चीजों को खत्म कर दो। आप समझें फ्यूचरलॉजी की गुफ्तगू कितनी अहमियत रखती है आपके दुश्मन के नजदीक, आइंदा जहान वो कितनी अहमियत की निगाह से देख रहा है, आप इसको महसूस करें। मैंने कहा एक दो दिन की गुफ्तगू में ये बात नातमाम रहेगी और नातमाम रहना है, लेकिन जहां तक फिक्रों को कुरेदने की बात है वो तो मैं कर ही जाऊंगा इंशाल्लाह। बस एक बेदारी फिक्र जरूरी है, सोचने के लिए लम्हे फिक्रिया आपको हो जाए आप खुद मुतालिया कर लेंगे, इसलिए आपको जाहिल नहीं, आप पढ़े लिखे लोग, खुदाबंदे आलम ने आपको इल्म की दौलत से नवाजा है। और माशाल्लाह से इस दौर में मनफी एतबार से भी मीडिया बहुत आगे है और मुस्बत एतबार से भी मीडिया बहुत आगे। आप इंटरनेट पर जाके दुनिया की जितनी अच्छी चीजें हैं वो भी देख सकते हैं और दुनिया की जितनी बुरी चीजें हैं वो भी देख सकते हैं। इस्तेमार का प्लान, तशय्यों को अगर मिटाना है तो तशय्यों के पास दो चीजें, एक रेड लाइन और एक ग्रीन लाइन। इन दोनों लाइंस को खत्म तो नहीं किया जा सकता है फौरन, इसलिए कि इन्हीं दो लाइंस पर इनकी जिंदगी है। अगर तशय्यों को मिटाना है, मकतबे अहले बैत के चाहने वालों को मिटाना है, तो रेड लाइन और ग्रीन लाइन को सुस्त कर दो, कमजोर कर दो। ये खुद ब खुद हमारे हाथ में आ जाएंगे। दुश्मन जिस पर अहमियत दे, आपका एनमी जिसको अहम समझे मनफी एतबार से, वो आपके लिए वो चीज मुस्बत एतबार से अहम होनी चाहिए। रेड लाइन और ग्रीन लाइन है तशय्यो के पास, उनकी जबान, दुश्मन की जबान, इसको कमजोर कर दो। क्या है रेड लाइन, इसका काम क्या है? ये रेड लाइन जो इनके पास है इनको दर से मुकाविमत देती है कि किसी जालिम के आगे झुकने नहीं देती है, किसी की बात सुनने नहीं देती है। और ग्रीन लाइन जो है इनकी हर जुल्म सितम पर उम्मीद की किरण को उजागर करती है। क्या है ये रेड लाइन क्या है, ये खत्ते किरमिस क्या है, ये सुर्ख निशान क्या है? समझिए आप कैसी दौलत है आपके पास, दुश्मन किस चीज के ऊपर निगाह गड़ा है, इनको मिटाना है तो निगाह सुर्ख को कमजोर कर, तो निगाह सुर्ख का नाम आशुरा है, निगाह सुर्ख का नाम करबला है जिसे दुश्मन समझ। इन्हें आजादार रहने दो, आजादारी के नाम पर इन्हें लड़ने दो, इन्हें आजादार रहने दो, इन्हें आजादारी के नाम पर इख्तलाफ पैदा करो, इन्हें आजादार रहने दो, ऐसा ईगो का मसला आजादारी को बना दो कि एक दूसरे भाई भाई आपस में झगड़ने लगे, अंजुमनबाजी के तफरके में मिल्लत टूटने लगे। इन्हें आजादार रहने दो, सब हुसैन ही का नाम लेकर करें लेकिन आपस में इख्तलाफ हो जाए, फूट हो जाए, यूनिटी खत्म हो जाए इनकी निगाहें। ऐसे लोगों को आमादा करो जो हुसैन का नाम लेकर जवानों को मकतबे अहले बैत और गैबत के जमाने में इमाम जमाना के वाकई फॉलोअर्स बनने से दूर रखें, ऐसे लोगों को तैयार करो। जो मुमकिन है जानबूझ कर ना कर रहे हो बल्कि नादानिस्ता तौर पर भी दुश्मन के हथकंडे बन रहे हैं। और दूसरे जो चीज है वो है ग्रीन लाइन, निगाह सब्ज, और वह निगाह सब्ज जो इनको हर जुल्म के मुकाबले में दरसे मुकावेमत देती है। इनसे कहती है जुल्म से घबराओ नहीं, एक दिन आएगा जब जुल्म दुनिया से मिट जाएगा। ये उम्मीद की किरण है जो इन्हें ना उम्मीद नहीं होने देती है, ये उम्मीद की किरण है जो इनको जमीन बोस नहीं होने देती है, ये उम्मीद की किरण है जो इनको जमीनगीर नहीं होने देती, अपाहिज नहीं होने देती है। ये उसी आलम में जहां टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं उन्हीं टुकड़ों के साथ आगे बढ़ते हैं, उम्मीद की बुनियाद। तो एक दिन आएगा जब जुल्म का खात्मा होगा, इसको कमजोर करो। सोचिए फ्यूचर लॉजी का कंसेप्ट आपके दुश्मन के नजदीक कितना अहम है, आइंदे जहान की गुफ्तगू आपके दुश्मन के लिए कितनी अहम है कि वो तफक्कुर हजरत वली अस अरवाह नाफिदा जो आपसे मखसूस है, दीगर अदियान में है लेकिन जिस जाहो जलाल के साथ, जिस आबोताब के साथ आपके यहां मौजूद है, दूसरों के पास नहीं मौजूद है। और यही वजह है कि नस्लें खत्म हो रही हैं लेकिन मकतबे अहले बैत इस इंतजार के साथ आज भी महफूज है। तो इसको समझने की जरूरत है कि फ्यूचर लॉजी की क्या अहमियत है, आपका दुश्मन आपसे क्या छीनना चाहता है, और जो कुछ आपसे छीनना चाहता है उसी को आपको बचाना है। इतनी अहमियत है इसकी कि इसको कमजोर कर दो, इनकी उम्मीद की किरण को मद्धिम कर दो, फिर हम कामयाब हो जाएंगे। आपको इस किरण को मद्धिम नहीं होने देना, बल्कि इस आयत के ऊपर पूरा भरोसा रखना है जो कुरान में मौजूद है, नुरीदु अन नमुन्ना अलल लजीना इस्तुज़इफु फिल अर्ज़। हमारा ये इरादा है, किसका इरादा है, इसको आपको बाबर करना होगा। ये इरादा किसका इरादा, कौन कह रहा है इरादा है मेरा, जैद बकर खालिद अमर नहीं कह रहे कि ये मेरा इरादा है, आम इंसान कोई हुक्मरान नहीं कह रहा है कि ये हमारा इरादा है, नहीं। नोरीदो अल्लाह है कि हम सब जानते हैं वाहिद है, हमारे हमारी माँ और हमारे बाप ने जब से हमने बोलना सीखा नहीं, बोलना सीखने से पहले जब हम बोलना भी नहीं जानते थे तो इशारों से हमारे माँ बाप ने हमें बताया कि अल्लाह एक है, और यही तहकीक से हमने साबित भी किया कि दो खुदा होना मुहाल है। तो फिर ये क्या मतलब नुरीदो, पुरलर का सेगा, जमा का सेगा इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है, नुरीदो हम चाहते हैं, हमारा इरादा, और ईदो भी तो कहा जा सकता था, आप पहचानिए कुरान की आयत है इसके हर हर कलमे में मौजजा है, हर हर कलमे में फलसफा है। नुरीदो, हम चाहते हैं, यानी इरादे की अजमत को बताना है, तादाद को यहां नहीं बताना है। यहां नुरीदो जमा का सेगा तादाद को बयान करने के लिए नहीं आया, यहां अजमत इरादे को बयान करने के लिए आया। पहचानो हमारे इरादे को, कितना अहम इरादा है हमारा। हमारा इरादा है, हमारा इरादा, हमारा इरादा कैसा है? इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून। हमारे इरादे में जब इरादा हो जाता है तो वो चीज हो जाती है, कहने बहने की जरूरत नहीं होती। अल्लाह कहता है तो नहीं है कि हो जा तो हो जाती है, आपको समझाने के लिए है कि कहता है तो हो जाती है, नहीं। इरादा ही तहक्कुक की दलील है खुदा की, उसका इरादा दूसरों के इरादों को तोड़ देता है। मौलाए कायनात ने क्या फरमाया? अरफ्तु रब्बी बिफस्खिल अज़ाइम। मुसम्मम इरादों को जो तोड़ देता है उसे खुदा कहते हैं। खुदा का इरादा कोई नहीं तोड़ पाता। खुदा जब इरादा कर लेता है तो अजब इरादे की उसकी मंजिल पूरी। ये गुफ्तगू है, अर्ज किया मैंने आपके सामने, किसी इरादे के ऊपर अगर पूरी गुफ्तगू कर दी जाए तो वक्त गुजर जाएगा, लेकिन आप मुख्तसर तौर पर इरादे इलाही आप देखें। एक तनूर से पानी निकलता है, पूरी कौम को डुबा ले जाता है। नूह का तूफान, तासीर बदल देता है इरादे इलाही, तासीर बदल देता है। तासीर में तब्दीली आ जाती है इरादे इलाही की बुनियाद पर, जो नहीं हो सकता है आम तरीके से, खुदा का इरादा वो करके दिखाता है। आग का काम है जलाना, लेकिन जब कोई खालिस बंदा खुदा के दीन की हिफाजत के लिए खुद को आग के हवाले कर देता है तो वही इरादा इलाही या नारो कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम बनकर सामने आता है। ये आग ठंडी हो जा, और क्या तरकीब है और क्या रियायतें हैं आग के ठंडा होने के लिए। या नारो कूनी बर्दन, ये आग ठंडी हो जा, लेकिन ठंडी से ठंडी तर ना हो जा। व सलामन अला इब्राहिम, ऐसी ठंडी हो जा जिसमें इब्राहिम सालिम भी रहे। रियायतें मुलाहिजा फरमाए, बर्दन सलाम। ये इरादे इलाही है जो उसी दरियाए नील से मूसा और मूसा वालों को, बनी इसराइल को, 12 दीवारों 12 रास्तों के दरमियान ऐसी 12 दीवारें कि एक दूसरे को देखते जा रहे हैं गुजर जाते, और उसी दरियाए नील पर उसी रास्ते पर पहुंचकर फिरौनी मताए हयात लुटा ले जाते हैं, डूब मरते हैं। यह इरादा इलाही रास्ता नहीं बचाता है, कभी रास्ते पर भरोसा नहीं कीजिएगा, रहबर बचाता है। ऐसा रहबर तलाश कीजिए कि जो रास्ते पर सही से लेकर चला जाए, वरना रास्ता तो वही था, चलने वाले तो वही लोग थे, सभी तो वही थे, लेकिन रहबर मूसा जैसा नहीं था, इसलिए फिरौनी डूब गए और मूसा वाले थे। रहबर बजाता, ऐसा रहबर तलाश करो जो इस्मत माब हो तो वो तुम्हें मंजिल मुराद तक ले जाए। इरादे इलाही को देखिए। अब कितनी मिसालें आपके सामने पेश की जाए, तलवारों की छांव में, अनकबूतों कबूतर के दरमियान, पहाड़ के खो में अपने नबी की हिफाजत करता है, तलवारों के दरमियान से सूरह यासीन की इब्तदाई आयतें पढ़ता हुआ नबी गुजर जाता है, तलवारें लिए हुए लिए रह जाते हैं। ये इरादे इलाही है, वही इरादे इलाही कर रहे। नुरीदो, पहचानिए क्या इरादा इलाही। नुरीदो अन नमुन्ना अलल लदीन इस्तुज़ईफू फिल अर्ज़। हम ये चाहते हैं हमारा इरादा यह है कि हम एहसान करें उन लोगों के साथ जिनको जमीन पर कमजोर बना दिया गया है। नजअलहुमा अइम्मा, उन्हें हम जमीन का लीडर बनाए, उन्हें हम जमीन का वारिस बनाए। यह है कुरान का इरादा, यह है खुदा का इरादा। आइंदा किससे है? मुस्तलअफीन जहान का है। आइंदा किसका है? मुस्तहिकीन इंसानियत का है। जो इस्तेहकाक रखते थे, जो एबिलिटी रखते थे, जो सलाहियतें रखते थे, उन्हें हक न दिया गया बल्कि ना हक आकर उस गद्दी पर विराजमान हुए जो वही की जगह थी, और आज उसी का नतीजा दुनिया देख रही है। मैंने अर्ज किया हज़रत ज़हरा मर्ज़िया ने क्या फरमाया कि अगर हक को उसकी जगह पर रहने दिया गया होता तो खुदा के सिलसिले में दो लोग भी इख्तिलाफ ना करते। ये सारे इख्तलाफात हक को अपनी जगह से हटा देने का है। लकद कतबना फिर जिक्र फिर जबूर में बाद जिक्र, हमने जबूर में जिक्र के बाद ये लिखा है कि अन्नल अर्जा यरिदुहा इबादी सालिहून। कौन है ये हम अइम्मा, कौन है ये जमीन के वारिस? वही हैं जो हमारे नेक बनते हैं, जो हमारे सालेह बनते हैं। पहचानवाया जा रहा है। आइंदा किसका है? आइंदा हुक्मरानों का नहीं है। उम्मीद की किरणें बाकी रखो। फ्यूचर उन लोगों का नहीं है जिन्होंने जुल्म जोर किया है। तो अब मुतालिया करो उन चीजों का जो उस जमाने में होने वाली। कुछ बातें मैंने आपके सामने कलर्स की, ताज्जुब हुआ कि ये कैसे हो जाएगा। आज तो सारी तकदो हमारी पैसे रुपये के लिए है, आज तो भागम भाग इसी की मची हुई है, दिन से लेकर शाम तक हम इसी में हैं कि हमारा स्टेटस हाई हो जाए, इसी के लिए तो सब कुछ हो रहा है, इसी के लिए तो सारी मारा मारी है। और इमाम जब आएंगे तो ये कैसे हो जाएगा कि एक बिरादर मोमिन दूसरे बिरादर मोमिन के जेब से पैसा निकाल लेगा और दूसरे को इतराज नहीं होगा। ये सब तो गप्पे हैं, आपके चले गए। ये सही है, आप इसको तसव्वुर ना करें, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। जो बातें जहां नहीं होती हैं, जो तसव्वुर नहीं बना होता है, वो मानने में, उसको जहन में उतारने में बहुत मुश्किल पेश आती है। ये कैसे बात कर रहे हैं मौलाना साहब? दो दो डॉलर, दस दस और बीस बीस रुपए के ऊपर हम जान देने वाले लोग ऐसे हो जाएंगे कि जेब से हमारे पैसा निकाल लिया जाएगा, सामने हमारे हम कुछ बोलेंगे नहीं। यही होगा, लेकिन अभी तसव्वुर नहीं बन पाता। हम आपको समझाए बात, तसव्वुर कैसे नहीं बन पाता है? आपके यहां मुल्क का एक कानून है बच्चों के सिलसिले कि बच्चों को अगर उनके मां बाप मारें या कुछ करें तो उनको फोन करने का हक है और उसके बाद वहां कर लेके चले। क्या है कानून, क्या नहीं है कानून, उसकी क्या आप है, वो हम यहां गुफ्तगू करने के लिए नहीं बैठ रहे। हम बता रहे हैं ये कानून है आपके, और ये आपको अगर हम ये बताएं ये कानून तो आपने हमें क्या बता रहे माना, हमें तो मालूम ही है। लेकिन ये कानून जाके हिंदुस्तान के इतिहास ने बताए, पाकिस्तान के इतिहास ने बताया, जहां से कोई कनाडा ना आया हो, जो नाम भी नहीं उसने सुना हो, ऐसी जगह है तो सबको लग जाएगा कि ऐसा भी है कोई मुल्क कि जहां ऐसा कानून हो। कहीं क्या गप्पे लड़ा रहे हैं मौलाना, ऐसा भी कहीं हो सकता है, माँ बाप से कोई बच्चे को छीन सकता है क्या? आप भी बात रहे, कहां की गुफ्तगू कर रहे हैं आप? मेरे दादा 1980 में इंतकाल हुआ उनका, तो मना गुजरा 1980 से, अभी उनको अभी कब्र से आप उठा के यहां ले आइए और ये बात उनको सुना दीजिए। बैठ जाओ, चुप हो जाओ, ये सब बातें क्या? मेरा बेटा तो मेरे सामने बोलने की जरूरत नहीं रखता था बूढ़ा होने के बावजूद, ये क्या बातें हैं, गप्पे लड़ा रहे हो। उनको हम बताएं कि एक चीज निकली है बनावे मोबाइल, आप तो उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, अतन जो बातें हम बताएं वो उससे बेहतर आप जानते हैं। उनसे बताएं कि ऐसी चीज निकली है कि जिसके जरिए से टेलीफोन की और इसकी उसकी कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजों की जो होती थी। कहेंगे बेवकूफी वाली बातें करते, हमको कहीं पैगाम पहुंचाना होता था, ट्रंक कॉल का सहारा लेते थे, कितनी देर में बात होती थी, 20 सेकंड में बात होती थी, कट जाती थी बात। ये सब कहां होता है? क्या है? क्या है? जो इंसान जिस माहौल को नहीं देख रहा है, जिसने, उसके लिए वो कंसेप्ट और वो तसव्वुर बनना मुश्किल है। हम जिस माहौल के आदि हो गए हैं, हम जिस गंदगी के आदि हो गए, जो आदमी ट्रेन के पास जिसका घर नहीं है, वो उस घर में चला जाए जहां से ट्रेन दिन भर में 8-10 बार गुजरती है, तो वो जैसे ही ट्रेन जाएगी वो कहता है, मौलाना साहब आप कैसे जिंदगी बसर करते हैं, यहां तो जमीन लरक रही, जैसे लगता है जलजला आ गया। और जिसकी यहां से दिन भर में 10 बार ट्रेन गुजरती है, उसको कोई असर ही नहीं आता, उसी में सोता भी है, खाता भी है, हंसता भी है, बोलता भी है, खेलता भी है, दौड़ता भी है, सब कुछ करता है। ये क्या हो गया? एक मेहतर गया अत्तार की दुकान में इतर लेने के लिए, आप मौलाना फरमाइन बातों को, अर्ज किया कि बातें सब रह जाएंगी। गया तार की दुकान में इतर लेने के लिए, इतर कौन सी बुरी चीज है? हर आदमी को पसंद है, हर शरीफ उन्नफ्स इंसान को पसंद है, हर इंसान को पसंद है इतर, रिवायतें हैं उसकी खुशबू की सिलसिले में सब कुछ। वो गया, उसने बेहतरीन किस्म का इतर निकाल के दिया, उसने सूंघा, खुश सूंघते ही बेहोश हो गई। अब उसके बाद वो परेशान, वो एक से एक इधर जिससे होश आता है वो सूंघाने लगा, वो और हालत बिगड़ गई, और उसकी हालत भी गड़बड़ी। उधर से दूसरा गुजर रहा था, वो झबुआ ले गया, उसने कहा इससे इसकी तबीयत नहीं सही होगी, इसको यही झबुआ सुनाना होगा जिसमें वो गंदगियां हैं, तो ये ठीक हो जाएगा। उसको आया, वो ठीक हो गया। कि क्या हुआ? सबको इधर की खुशबू अच्छी लगती है, इसको गंदगी कैसे पसंद है? महसूस कीजिए इस हकीकत को। हमारे लिए ताज्जुब की बात है कि ये कैसे हो सकता है मौला के जमाने में कि हमारा भाई बैठा रहेगा और हमारे ही जेब से पैसा निकालेगा और हम चुप्पे बैठे रहेंगे, हम बोलेंगे ना कुछ, ये कैसे मुमकिन है? मौलाना साहब मुमकिन है जब उस जमाने में पहुंचिएगा जब रूह बालिग हो जाएगी, जब अक्ल बालिग हो जाएगी। अभी अभी हम बच्चे हैं, हम सब बच्चे हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम बच्चे हैं। बच्चे का क्या है? बच्चा गया आपके साथ बाजार में, वक्त गुजर गया यहीं पर, बच्चा गया बाजार में, बाप से जिद किसने कि मुझे ये खिलौना चाहिए, जेब में पैसा था माशाल्लाह से बाप के, उसने फौरन दिला दिया, कितने का है कितने का नहीं, क्या मतलब? बच्चे ने मेरे चाहा दिला। अब घर आकर बच्चा बाप को प्यार भी कर रहा है, भूसा भी ले रहा है, बाबा अच्छे हैं, बाबा प्यारे हैं, बाबा क्या कह, सब कुछ कह रहा है। दूसरे दिन फिर गया, जेब में पैसा नहीं, तो उसने तो बाप ने नहीं दिलाया। अब वहां के माँ से बुराई कर, बाबा बहुत गंदे हैं, बाबा बहुत खराब है, उन्होंने हमें ये नहीं दिलाया, इतना अच्छा खिलौना था, हम कहते रहे, हमें कहला दिया, हमें महंगा दिया, ये करने। बच्चे की मेंटेलिटी क्या है? ज़हनियत क्या है? क्या है ज़हनियत? कुछ मिल गया तो माँ बाप से अच्छा कोई वजूद नहीं, नहीं मिला तो उनसे बुरा कोई नहीं, भला नुकसान है, उसने तो आइसक्रीम मांगा था, उसने अभी तो खिलौना दिला दिया था आपने, $100 का आइसक्रीम शायद $1 की, $2 की, जो भी हो यहां तो $100 और $1 में क्या नुकसान है भाई? $1 आप नहीं दे रहे, $100 की आप नहीं समझते मौलाना, इसको जो है वो खांसी, अभी दो रसा मौसम है, दो मौसम मिल रहा है, अभी तबीयत खराब होने का खतरा इसे नहीं खिलाए, $1 के लिए आप उसी पर वो आपको कहने लगा बाबा गंदे हैं, बाबा बात नहीं सुनते हैं, क्या हो गया? मेंटलिटी बच्चों की समझिए, हमारी पोजीशन, हम जवान हैं, आप हमें बच्चा कह रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? हम बूढ़े हो गए, आपको समझ में नहीं आता, आप हमें बच्चा कह रहे हैं, हमारी तौहीन कर रहे हैं? तो नहीं जना, तौहीन खुदा ना खास्ता किसी मोमिन की, मोमिन का दिल अर्श रहमान होता है, मोमिन की तौहीन अर्श इलाही बढ़ाना है, तौहीन नहीं। अब आप हमारी सूरत हाल देखिए, हमने दुआ मांगी लगे अल्लाह ये परेशानी है हल कर दे, नहीं हुई वो परेशानी तो हल नहीं, दूसरी परेशानी भी आ गई। अब हमने कहा अब सब्र कीजिए, इम्तिहान है, अल्लाह को सारा इम्तिहान हमी से लेना था, हम ही बचे इम्तिहान के लिए, दुनिया में और कोई नहीं बचा इम्तिहान उनके लिए। मतलब कैसी बातें करते हैं आप लोग, दुआ करते करते जबान घटा गई हमारी, कुछ ना मिला। और उसको देखिए, उसको वो रिश्वत लेता है, रिश्वत उसको देखिए क्या मिल गया, हमको कुछ नहीं मिला। जबरदस्ती आप लोग कहते हैं दुआ कर दो, क्या है? और उसके बाद अल्लाह ने कहा चाहिए ऐसा, इसको जरा नवाज दो। अब देखिए, अब जहां से मिला पैसा आ रहा है, अल्लाह तेरा शुक्र, तूने बहुत नवाजा है। मौलाए कायनात क्या फरमाते हैं, जब तुम गुनाह पर गुनाह करते जाओ और तुम्हारी नियमतों में इजाफा होता जाए तो फैजिर हो, डरो, ये नियमत नहीं है, ये मोहलत का अजाब है। डरो, जनाबे कुबरा में आए जिसने ये कुरान की आयत है जिसे मौलाए कायनात ने इस्तेमाल किया, यही आयत मौला बीबी ये द्वारा निशान में इस्तेमाल की, अनसैता قول الله عز وجل, ए यजीद तुझे ये समझ रहा है कि हमारे हाथों को बांध दिया है, हमें इस तरीके से लाया तो अल्लाह के सामने तेरी शान है और हमारा याद बिल्ला अल्लाह के नजदीक जलील है। अनसैता قول الله عز وجل, तू भूल गया अल्लाह के खौल को, कि जिनको हम ज्यादा देते हैं ये उनके लिए बेहतर ही नहीं है। इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मा, हम इन्हें मोहलत देते हैं ताकि गुनाहों में इजाफा करें। ये क्या है, हम नहीं बेचा। तो क्या कहा जमीन ने, क्या कहा? अभी ज़हन मदहरी पर है तुफूलियत का आलम, अभी ज़हन मदहरी पर है तुफूलियत का आलम, कि मिलाना जब खिलौना तो मचल गए खुदा से। अभी ज़हन मदहरी पर है तुफूलियत का आलम, कि मिलाना जब खिलौना तो मचल गए खुदा से। यही है ये माले दुनिया एक खिलौने की हजरत होती है, आज तक किसी के पास बचा ही, किसी के पास बचा ही। कुरान क्यों कहता है लातुल हिकम अमवालकुम व औलादकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ये साहिबान ईमान तुम्हें माल औलाद खुदा से दूर न करते, लहब में मुब्तला न करते। तो ये हमारे लिए क्यों नहीं काबिल तसव्वुर है, इसलिए कि माल को हमने खुदा समझ लिया। लेकिन माल की हकीकत जब खिलौना समझ में आ जाएगी तो बच्चा खिलौने से खुश होता है, 40 साल के बूढ़े को खिलौना दीजिए तो कहेगा भाई तौहीन कर रहे हैं आप, क्यों? इसलिए उसकी फिक्र बालिग हो गई। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में आप जिस इल्म को पहचाने आइंदा जहां, फ्यूचरलॉजी क्या है दीन इस्लाम में, आप पूरी दुनिया जो इल्म से फैज हासिल कर रही है वो फकत दो हर्फ है, 2600 रुपए ना 2700 रुपए ना अरबी में, उसमें से फकत दो हर्फों का इल्म इस वक्त दुनिया में है, फकत दो हर्फों का ही। तो क्या आप कयामत ढाए हैं दुनिया इस दो हर्फों के दरमियान? और जब इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे तो खुदा बंदे आलम उन 25 दीगर हर्फों का भी इल्म इसमें मिला देगा, यानी उस वक्त दुनिया में कुल 27 हर्फों का इल्म होगा। पहचानिए दो हरफों के इल्म के दरमियान और 27 हरूफ के इल्म के दरमियान क्या फर्क होना चाहिए। आप इस पर ताज्जुब न कीजिएगा कि अभी हवाई जहाज से चल रहे हैं उस वक्त सफर का काम बादल अंजाम देगा, इस पर ताज्जुब न कीजिएगा कि ये कैसे हो जाएगा बादल से लोग चलेंगे। इल्म में इजाफा हो आइंदा जहां इन तसव्वुरात के साथ आप देखें। रह गई वो गुफ्तगू जो मदीना फाजला के उनवान से मैं करना चाहता था, सारे अदियान में सारे रिलीजन में एटोपिया का मौजू, आइंदे जहान का मौजू, तो मदीना फाजला का मौजू एक अहम गुफ्तगू है। हर रिलीजन हर फलसफा एटोपिया और मदीना फाजला की गुफ्तगू करता है, क्या है? लेकिन वक्त नहीं है इसके ऊपर मुताला लेते हैं कि आइंदे जहान में फ्यूचरलॉजी में इस्लाम का जो कंसेप्ट है क्या होने वाला है, और जो कुछ होने वाला है वैसे ही खुद को आमादा कीजिए ताकि मौला के आने पर जहमतों का सामना ना हो। अपने आप का खुद मुतालिया कीजिए। इन्नल इंसान अला नफ्सिही बसीरा, हर इंसान अपने सिलसिले में बेहतर खुद जानता है। आप मुझे अल्लामा देहर लिख दीजिए, खुश हुए हमसे मौलाना बहुत अच्छे आए थे, अल्लामा लिख दीजिए कल से आप मुझे, उसके बाद दूसरे दिन खुश हो या मुझे मुश्तहिद आसर लिख दीजिए, लिख दिया। दुनिया खुश होती होता जाइए, मजलिस पढ़ने जाइए, उनसे आए 16 साल रह गए इनको अल्लामा लिखो मुश्तहिद लिखो, लिख दीजिए, होता क्या हर आलिम जानता है कितना बड़ा जाहिल है, कमियां अपनी हर आलिम जानता है कहां कहां उसकी कमियां हैं, खुद समझता है कितनी कमी कहां कहां है। आपको क्या मालूम, आप क्या जानते, आपको नहीं। हर आलिम अपने बारे आलिम हर बात जानता है वो कितना जाहिल, किन किन मरहले में उसमें कमियां पाई जाती। इन्नल इंसान अला नफ्सिहि बसीरा, हर इंसान अपने बारे में बखूबी जानता है। नफ्से अम्मारा उसे धोखा दे दे उससे क्या होता है, तुमसे बड़ा कोई नहीं। गुरूर तकब्बुर में वो फूल जाए बैलून की तरह, उससे क्या होता है। लेकिन जब अपने आप में आता है, शब के सन्नाटे में इसीलिए कहा है, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, अपना हिसाब पहले कर लो क़ब्ल इसके कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। ऑडिट करवाते हैं ना आप, ऑडिट जानते हैं ना, ऑडिट करो खुद, ऑडिट कर लो क़ब्ल इसके कि ऑडिटर आके ऑडिट करे, बड़े फंस जाओगे। अगर अपने माल की ऑडिट नहीं की है, अगर अपने बिजनेस की ऑडिट नहीं किया, गवर्नमेंट ने ऑडिटर बैठा दिया, तो फिर भागते पनाह नहीं मिलेगी। हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, क़ब्ल इसके कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए, तुम्हारी ऑडिट की जाए, अपना हिसाब कर लो। अब जो लोग अपना हिसाब कर लेते हैं वही इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के खास नुमाइंदे, उनको फिर किसी चीज की जरूरत नहीं होती है कि वो हैरान ये कहे मौला आ जाइए हम आपके इंतजार में, बल्कि मौला हर घड़ी उनकी आंखों के सामने होते। हमें भी खुद को ऐसा बनाना कोई मुश्किल नहीं है। इन्हीं कमियों में आप अपने को बना सकते हैं, इसलिए कि चैलेंजेस का मुकाबला आपको है। जहां चैलेंजेस का मुकाबला होता है, जहां चैलेंज होता है, जहां मुकाबला होता है, वहां बहुत कुछ हो जाता है। जहां मुकाबला नहीं होता है, वहां यूं ही जिंदगी गुजरती रहती है। चैलेंज के मुकाबले में जवान भी परफेक्ट बन सकता है, चैलेंज नहीं है तो फिर यूं ही जिंदगी गुजर जाती है। हमें इस पर सोचना होगा कि इस गैबत के जमाने में जहां जहां जाने वाले मारे जा रहे, एक सिलसिला है आपके यहां सैलाब का जिससे जूझ रही है इंसानियत। हम कुछ नहीं कर सकते, दुआ तो कर सकते हैं। ये एक मरहला है, कितने कांटे जा रहे हैं, मैंने कल अर्ज किया, इस मौजू को पेश किया। जा जो सुबह करे इस आलम में के लम्या तंबे उमूर मुस्लिमीन फलई सभी मुस्लिम, उसे मुसलमानों के उमूर की कोई खबर नहीं, वो मुसलमान नहीं है। जब फरियादी आवाज दे रहा हो या लल मुस्लिमीन, मुसलमानों मेरी मदद करो, और कोई जवाब न दे, फलई सभी मुस्लिम नहीं। और यह सिलसिला बढ़ता है अजीजों, पहले आम लोग कत्ल किए जाते हैं, आम सबका खून महफूज है, सबका खून इज्जत रखता है दीन इस्लाम में, लेकिन जैसे जैसे सिलसिला बढ़ता जाता है वैसे वैसे खून की अजमत बढ़ती जाती है। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का पहले खत्म नहीं हुआ, आहिस्ते आहिस्ते कत्ल करके आदत बनाई गई, उम्मत को कमजोर किया गया, फिर हुसैन का कत्ल हुआ तो शादी आने बजे हैं, नौबत ये ना आने पाए कि ऐसी ज़वात मुकद्दसा का कत्ल हो जाए और हम खामोश बैठे रहें। क्यों हुआ, इसलिए हम जहां तक कुदरत रखते हैं, जिस मुल्क में भी हैं, हम कोई भी काम नामनी का करना नहीं चाहते। आप समझिए ये बात को, दीन मकतबे तशय्यो का इफ्तिखार ये है कि खुद तो कत्ल होता आया है लेकिन कभी भी मजलूम को कत्ल नहीं किया। मकतबे तशय्यो कभी भी मजलूम कुछ नहीं है, जुल्म बर्दाश्त किया है मकतबे तशय्यो ने, मुकाबला किया है मकतबे तशय्यो ने, लेकिन कभी भी जबरदस्ती उसको मारा है मकतबे तशय्यो ने, अगर जो है वो सूरत हाल बनी है कसास की सूरत में जिसने कत्ल किया है, लेकिन कभी भी मकतबे तशय्यो ने मजलूम खुशी का सहारा नहीं दिया है, हमेशा अमन व अमान का रास्ता इख्तियार किया है। आपके पास जो भी अमन का रास्ता, जो भी अमन का रास्ता है, उससे आप अपने वजूद का इजहार करें, अपने बताएं दुनिया को कि हम जिंदा हैं, ये जिंदगी रहेगी तो इमाम जमाना इससे खुशहाल होंगे। इस जिंदगी से मौला खुश होता है, इस हयात से मौला खुश होता है। आप जानते हैं एक जाने वाले का खून मौला को कितना रुलाता है, ناخن. آپ اس کا خیال بس کیا کیجیے کہ زہرا کے لال کو جتنا آنسو بہا رہے ہیں اس سے زیادہ آنسو بہانے کی نوبت نہ ہے. خون کے آنسو جو مولا ہو رہا ہے بس اسی کو پر اکتفا رہے, ایک ہی بال بھی مقدر اہل بیت کے جانے والوں کا اگر بیجا طور پر استعمال ہوتا ہے تو وہ بھی مولا کو تکلیف ہوتی ہے. اتنا سب ہے اس امام کے پاس. زہرائے مرضیہ 3 مہینے کے اندر اس جاکا مصیبت کو برداشت کر کے اللہم عجل وفاتی سریعہ کہہ کے گزر گئیں. خدایا مجھے جلدی موت دے دے, برداشت نہیں ہوتا. علیہ مرتضیٰ 25-30 سال کے درمیان ایسنا صبر کیا کہ اول مظلوم اسبر الصابرین کہے گئے, لیکن نوبت یہ پہنچی کہ شہادت سے پہلے تمنا کرنے لگے, خدایا ان لوگوں کو مجھ سے بدتر حاکم دے اور مجھے ان سے بہتر لوگوں کے پاس بھیج دے. حسین ابن علی نے اتنی مصیبت برداشت کی, اتنی مصیبت برداشت کی, کیا نہیں برداشت کیا. لیکن عاشورہ کا دن, زینب نے کیسی مصیبتیں برداشت کی لیکن 20-25 سال اللہ کیسا صابر ہے وہ غیب میں بیٹھنے والا, یہ تو بس ختم ہو گئی بات. کیسا صابر ہے وہ غیب میں بیٹھنے والا, پردہ نشین کتنا صابر ہے, کیا کیا دیکھنا ہے وہ. علی مرتضیٰ اسبر الصابرین تھے عزیزو, اسبر الصابرین زیارتوں میں کہا گیا, زیارتوں میں السلام علیکم یا اول المظلوم اسبر الصابرین, صبر صبر علی سب سے عظیم سب. لیکن کہاں صبر علی کا باندھ ٹوٹا, جب خبر ملی زہرا کی قبر کھودنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں. زہرا کی قبر کھودنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں. وہ علی ابن ابی طالب جنہوں نے زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر صبر کر لیا, جنہوں نے زہرا کے نیلی چہرے پر صبر کر لیا, جنہوں نے پیغمبر اکرم کے پاس جب زہرا مرضیہ کو دفن کرنے کے لیے گئے ہیں قبر میں تو اس وقت پھوٹ پھوٹ کر علی روئے ہیں, لیکن علی نے ہاتھوں میں تلوار نہیں لی. لیکن جیسے ہی یہ خبر ملی علی مرتضیٰ کو کہ لوگ قبر کھودنے کے لیے آ رہے ہیں, علی نے مخصوص رسمی لباس پہنا, ایک بار جنت البقیع کی طرف, پہچانتے ہو میں کون ہوں, میں علی خیبر ہوں, مجھے پہچانتے ہو, میری مجھ میں ابھی بھی قوت موجود ہے, میں نے صبر کیا کہ دین اسلام کو نقصان نہ پہنچے. لیکن اگر یہ قلم کو, یا اللہ اکبر, زہرائے بقیع میں کتنی اہمیت باقی ہے کہ علی مرتضیٰ کو یہ بھی پسند نہیں, یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی قبر زہرا جو ظاہری طور پر وہاں تھی اس کی طرف کوئی ٹیڑھی نگاہ اٹھا کر دیکھ لے. کتنا صابر ہے وہ غیب میں بیٹھنے والا جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بقیع ویران کر دیا گیا, حسن مجتبیٰ کی قبر کو ویران کر دیا گیا, زین العابدین کی قبر کو ویران کر دیا, چار ائمہ کی قبر کو ویران کر دیا گیا. لیکن اس کے بعد جو صبر کر لے جائے اسے ولی عصر کہتے ہیں. کتنا صابر ہے وہ امام جو سب کچھ دیکھ رہا ہے, جانے والوں کو کافر کہا جا رہا ہے دیکھ رہا ہے, جانے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے. کیا بھی بے چینی نہیں ہوتی کہ ہم فریاد کریں یا با صالحین مہدی, اب تو آ جاؤ, ارے بقیع ویران ہے, جنت البقیع ویران ہے, ارے دشمن ہر جگہ, کبھی صابر رہا تو نقصان پہنچا رہا ہے, کبھی کربلا کو نقصان پہنچایا گیا, آ جاؤ تاکہ خون حسین کا بدلہ لے لو, تاکہ سکینہ کے تماچوں کا بدلہ لے لو, تاکہ زین العبا کی ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کا بدلہ لے لو. کہ جب آیا ہے حداد بیڑی کو کاٹنے کے لیے تو ایک بار تاب کو کہتا ہے ارے یہ بیڑیاں کیسے کاٹوں, ارے بیڑیوں کو لوہا تو جسم کے اندر پیوست ہو گیا ہے, اگر یہ کاٹا جاتا ہے تو ساتھ میں ہڈیاں.
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
رَاجِعُونَ. بہنے وارث خون حسین, وارث خون زہرا, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم گناہگاروں کو ناصروں میں شمار فرما.